सभी माताएं प्रसन्न हैं या ठंड लगने लगी? यहाँ की ठंडी प्रसन्नता को कम कर देती है कभी कभी। बाबा की मुरली हम सभी ने सुन ली है, रोज भी सुनते हैं और अव्यक्त भी सुन ली है। सभी ने महसूस किया होगा बाबा हमें कितना प्यार करता है। किया? किया? हर बार करना है ये महसूस। बाबा को अच्छी तरह से देखना है, सचमुच बहुत प्यार करता है। उस प्यार को यदि हम महसूस करते हैं तो हमारे मन में उसका रिटर्न देने की श्रेष्ठ भावना पैदा होती है। और अगर बाबा डांटने लगे तो क्या होगा? बाबा डांटते नहीं, कभी कभी किसी को लगता है डांट भी देता है। ये अपनी अपनी फीलिंग्स होती है। हर मुरली के बाद मैं बहुतों से क्लासेज में पूछता हूँ बाबा का स्वरूप कैसा था, तो उसी समय कोई कहेंगे प्यार का सागर था, कोई कहेंगे धर्मराज था, क्योंकि ये अपनी अपनी स्थिति पर भी निर्भर करता है। बाबा हमें शिक्षाएं देता है। बाबा ने कहा स्वभाव संस्कार को बदलो, वो उसका बहुत प्यार है ना, लेकिन जिसके स्वभाव संस्कार कड़े होंगे उसको कुछ और लगेगा। बाबा धर्मराज है, कह रहा है बदलो इन्हें, उन्हें ऐसा लगेगा। तो हमारी अपनी ही फीलिंग्स बाबा के अनुभवों का आधार बन जाती हैं। तो पहली बात सभी को याद होगी, यहाँ रिपीट हुई है, तीन भाग्य की रेखाएं परम बाप के द्वारा पालना कैसी। हाँ, एक ये सुंदर रहस्य बताया, प्यार ही पालना है। बहुत सूक्ष्म रहस्य है। भगवान से जब प्यार के वाइब्रेशन हमें आते हैं तो हमारे अंदर के कई जहर समाप्त हो जाते हैं। जहर है ना आत्मा में, हम सब ने भरे भी हैं, अभी बढ़ते रहते हैं। उस जहर को हमें निकालना है। मैं छोटी सी एक कहानी सुना दूं आपको, आपको याद भी रहेगी। पांडव जब 13 साल के वनवास में थे तो 6 साल बीत गए थे, तो कुंती की एक दिन की मनोदशा का वर्णन किया गया है। कुंती गंगा के किनारे बैठी है और गंगा की लहरों को देख रही है। पीछे से विदुर आता है क्योंकि श्याम हो गई है, कि चलो भाभी यहाँ क्या कर रही हो? कहा मुझे तपस्या करनी है अब। तो विदुर ने सोचा शायद इसके बच्चे भाई जंगल में हैं, इसको भी वैराग्य हो रहा है। कहा अभी तुम वन में जाकर क्या करोगी? पांडवों को वापिस आ जाने दो, राज ले लेने दो, फिर सोचना। कहा नहीं, मुझे तो तपस्या करनी है। घर आ गए बात करते करते, तो कहा क्या तपस्या करनी है? कि मुझे जंगल में नहीं जाना, आपके पास रह के, क्योंकि वो विदुर के घर रहती थी, आपके पास रह के ही तपस्या करनी है। और वो तपस्या है कि मैंने अपने अंदर जो जहर भर लिया है उसे निकालना है मुझे। पूछा क्या जहर भर लिया है? कहा पाप करता है शकुनी, दुर्योधन, धृतराष्ट्र या और कोई, और उनके लिए मेरे मन में घृणा, बदले की भावना पैदा होती है। ये मैंने जहर भर लिया है जो मुझे सुखी नहीं रहने दे रहा है। तो उनका पाप वो जाने, हर एक अपने पाप और पुण्यों का स्वयं जिम्मेदार है और उसका फल उन्हें मिलना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैंने ये क्यों जहर अपने अंदर भर लिया है जो मुझे सुखी नहीं रहने दे रहा है? इसको मुझे निकालना है, ये तपस्या मुझे करनी है अब। मुझे भी बहुत अच्छी बात लगी कि देखो मनुष्य दूसरे को देखकर अपने अंदर विष भर लेता है, कुछ घृणा का, कोई ईर्ष्या का, कोई बदले की भावना, क्रोध अंदर हमारे हो जाता है। इसने ऐसा किया ऐसा किया, लेकिन हमारा विष जहरीला तो हमें ही बनाता है ना। दूसरों पर उसका प्रभाव पड़े न पड़े, हमारी आंतरिक शक्तियां इससे नष्ट हो जाती हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है कि बाबा जब हमें प्यार देता है तो उस प्यार से आत्माओं के अंदर का विष निकलने लगता है। जो उसे स्वीकार कर ले कि बाबा का प्यार मिल रहा है तो विष बाहर निकलने लगेगा। कोई मुझे पूछ रहा था आज ही कि देखो बाबा ऐसा बैठा रहता है, हम बहुत आपस में चर्चाएं करते रहते हैं बाबा के स्वरूप पर कि बाबा सब कुछ जानता है फिर भी बैठा कैसे रहता है जैसे कुछ नहीं जानता। बोला ना, तभी तो प्यार देता है ना। अगर उसे पता हो ये बड़े खराब बच्चे हैं, सुधर ही नहीं रहे, तो प्यार मिलेगा पहुंचेगा ही नहीं। सबका सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ समा कर प्यार दे रहा है, ये भाव समान बनने वालों को सोच लेना है। सिखाता है बाबा, ये केवल खुद नहीं कर रहा, हमें सिखा रहा है कि देखो जैसे मैं सब कुछ जानते हुए, अब क्या बाबा जानता है कि जिसने जो पुरुषार्थ कल पहले किया है वो करेंगे ही, मैं क्यों ना इन्हें प्यार दूं, क्योंकि मेरा प्यार ही इनकी इनके लिए मदद है। हम भी सब ये जानते हैं जो जिसने किया है वही वो करेंगे। हम कितना भी जोर लगाएं, बाबा कितना भी जोर लगाए, हमारे पास एक कंटेनर हो एक बर्तन हो जिसमें एक लीटर दूध ही आ सकता है, हम जोर लगाएं 5 लीटर भर दें, संभव होगा? हमारे पास एक प्लास्टिक की थैली हो जिसमें ठूस ठूस के भरा जा सके, माल आधा किलो ही आता हो, हम सोचे 5 भर दें तो थैली का क्या होगा, बचेगी नहीं। तो जिसकी जितनी क्षमता है, ये कैपेबिलिटी है, ये अनादि क्षमता है हर आत्मा की अलग अलग, उस क्षमता के अनुसार उस कैपेबिलिटी के अनुसार ही कोई आत्मा बाबा से ग्रहण कर रही है। बाबा को ये पता है इसलिए वो संपूर्ण रूप से साक्षी है। हम भी ये लक्ष्य बना लें, बहुत अच्छा लक्ष्य, जिन्हें बहुत आगे बढ़ना है, जिन्हें बाबा का काम करने की इच्छा है, काम तो अभी भी कर रहे हैं लेकिन आने वाला समय कुछ और मांग करेगा ना हमसे, वो संकल्प कर लें, दृढ़ हो जाएं, हमें हर हाल में अपने चित्त को शांत रखना है, इसके बिना हमारी शक्तियां नष्ट होती रहेंगी। मैं एक माता का समाचार सुनाऊं आपको, किसी की बुराई करने की बात नहीं है, उसको बच्चे हैं बड़े हो गए उनके परिवार हो गए, लेकिन उसके अंदर एक भावना है कि मैं ही जिम्मेदार हूं अपने बच्चों की। वो ये समझते ही नहीं कि 40 साल के हो गए हैं, 40 साल का व्यक्ति छोटा थोड़ा ही होता है, वो जिम्मेदार होता है, उनको अपने बच्चे हैं, और ये उनकी चिंताओं में आज उसको क्या कहते हैं शुगर हाई हो गया, बहुत हॉस्पिटल में थी, क्यों हो गया, टेंशन बहुत हो रही है बच्चों की। बच्चे मस्त हैं, वो बड़े बड़े हैं, 40 का 38 का 35 का उनके बच्चे हैं, वो मस्त हैं, उन्हें पता भी नहीं कि हमारी माँ हमारे कारण वो हाई शुगर में पहुंच गई है, हार्ट पर उसके असर आ रहा है, वो मस्त, और ये बहुत चिंतित। सोचने की बात है, मैंने आपको ये उदाहरण इसलिए दिया कि इसको आप एनालाइज करें, इसका विश्लेषण करें कि ये स्थिति कितनी ठीक है और कितनी गलत है। मैं इसलिए आपको केवल उदाहरण दिया, उदाहरण तो सच्चा है, मेरे से मिलने आए थे, पूछ रहे थे क्या करूं मैं, तो कुछ उनकी अपनी पारिवारिक बातें हैं वो बांटना चाहती है, कोई समस्या नहीं एक्चुअली, समस्याओं के बारे में आप सब भी जानते हैं, जो नहीं जानता उसे जान लेना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं होती नहीं, क्रिएट की जाती हैं। घरों में भी क्रिएट समझते हैं माताएं, बना लेते हैं, पैदा कर देते हैं उन्हें। ये बिल्कुल सत्य है। हम अपने कामकाज में देखते हैं, समस्याएं होती नहीं, क्रिएट की जाती हैं। अब हमारे पास नीचे बहुत बड़ा ग्रुप, बड़ा तो वैसे तो बड़ा नहीं था, 17-18 हजार आते रहते हैं, लेकिन उसमें 9 हजार साउथ इंडियन थे। अब साउथ इंडियन को जाने के लिए चावल तैयार करने होते हैं अपने। अब मान लो हमारे पास 10 पार्टियां जा रही एक साथ, 10 तो मिनिमम है ना, एक साथ जो आएंगी चावल लेने। अब उनके बड़े बड़े थाल, उसमें वो इमली मिलाएंगी या नींबू मिलाएंगी या टमाटर का जो बना देते चटनी वो मिलाएंगे। उनको बहुत जगह चाहिए, किचन बन रहे हैं टूटे हुए सब जगह, किचन में स्टोर का सामान भी रखा, बहुत कम जगह है। तो मैं देख रहा था उन्हें, मैंने उनका सेट किया कि भाई डाइनिंग हॉल का नीचे का आधा हिस्सा इन्हें दे देते हैं, समस्या खत्म। सबने स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरे हटते ही एक ने कहा, क्यों ये सदा लेने लगेंगे हमारा डाइनिंग हॉल? हमारा डाइनिंग हॉल, देख लो कितना अच्छा शब्द है। मैंने पूछा, फिर उसको बुलाया, मैंने कहा ये डाइनिंग हॉल किस लिए बनाए हैं भाई? सबको सुख देने के लिए ना, वो हमारे गेस्ट हैं, हमारा कर्तव्य है उनको हर तरह से मदद करना, नहीं तो हमारा महत्व क्या रहा? तुम्हारा डाइनिंग हॉल यदि ले लेंगे तो हम तुम्हें दूसरा दे देंगे। मुश्किल से वो संतुष्ट हुए, मेरा डाइनिंग हॉल सदा के लिए ले लेंगे ये, जो सब कुछ छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं उनका डाइनिंग हॉल। तो समस्याएं क्रिएट की जाती हैं। मैंने उन्हें कहा, 2 ही दिन की तो बात है, कल की थी एक, आज की, आज पूरा हो गया, आज रात को सभी निकल रहे हैं। 2 दिन के लिए आप अपने को सुखदाता का बच्चा मान लो ना, बाद में ना मानना वो तुम्हारी मर्जी यार, मेरे कहने से 2 दिन तो मान लो। मुश्किल से वो सहमत हुए, तब आज तक का सारा काम शांति से हुआ। तो घरों में भी हम ये ध्यान रखेंगे, अगर किसी चीज को हम बढ़ाएंगे, सहज नहीं रहेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, अपने को आवश्यकता अनुसार मोड़ेंगे नहीं, तो छोटी छोटी बातें समस्या प्रतीत होंगी। क्या घरों में सब नहीं करते, 4 मेहमान आ जाएं, 2 ही कमरे हों, सुलाएंगे ना उन्हें? या कहेंगे जगह नहीं है भाई, रात हो गई, अब अपने घर जाओ, कहेंगे? हम सब करते हैं ना ये। जहाँ हमारे अंदर सुख देने की भावना हो, सत्य तो यही है, वहाँ समस्याएं हैं ही नहीं। और जहाँ सुख देने की भावना नहीं है, मैंपन है, वहीं समस्याओं का अंबार है। तो बाबा हमारी बाप के रूप में बहुत सुंदर पालना कर रहे हैं, सभी सुंदर फीलिंग में आ जाएं, भगवान पाल रहा है हमें टीचर रूप में। देखो अगर वो हमें न पढ़ाए, कितना सुंदर ज्ञान उसने हमें सहज सहज भाषा में दे दिया है। आप सबने सुना हो, नीचे इस बार शारदा पीठ का शंकराचार्य बाबा से मिलने आया था। अब कोई कह रहे थे वो शंकराचार्य है, कोई कह रहे थे नहीं है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में भी आ गया, सुना मैंने आज पत्रिका में। लेकिन उस मैंने फिर मीडिया वालों को कहा था, भाई इसका 1 घंटे का इंटरव्यू ले लो, क्योंकि उसने परसों सवेरे क्लास में अपना अनुभव सुनाया और बताया, शंकराचार्य की ऐसी गद्दी है उस पर झगड़े तो चलते रहते हैं, क्योंकि इसका गुरु शंकराचार्य था और ये युवराज था, इसने संन्यास लिया था, तो हो सकता है शंकराचार्य ने इसको गद्दी दे दी और समिति ने न स्वीकार किया हो, दूसरे को बैठा दिया हो, जैसा शंकराचार्यों की गद्दी पर झगड़े चलते हैं। पर बहुत ग्रेट स्पीकर, बताया कि मैं भी हिंदी का प्रोफेसर भी रहा हूं, बहुत सुंदर बोलना, कहा बाबा आए, मैंने देख लिया शिव आए हैं, ब्रह्मा बाबा आए हैं। 20 मिनट तक मेरी आंखों में आंसू बहते रहे, खुद सुना रहा वो स्टेज पे, उसने 15-20 मिनट बोला होगा, फिर दो चार और बहुत अच्छी बातें बताई। एक बात उसने कही, हिंदू लोग कहते हैं हिंदू धर्म कहो, उसने बहुत सुंदर व्याख्या की। उसे पता चलता था वो बहुत अच्छा स्कॉलर है, क्योंकि आपको जानना चाहिए शंकराचार्य वही बन सकता है जो एक तो ब्राह्मण हो, दूसरा बाल ब्रह्मचारी हो, तीसरा चारों वेद और छह दर्शनों का परफेक्ट ज्ञाता हो, उसके अलावा कोई बन नहीं सकता। कोई ब्रह्मचारी ना हो और वो बन जाए, वो संभव नहीं है। तो कहा अरबी और फारसी में हिंदू कहते हैं काफिर को, और वो लोग काफिर उन्हें कहते थे जो 5 बार नमाज नहीं पढ़ते। उन्होंने कहा ये सब इधर के लोग हैं ना, पूर्व के काफिर हैं, हिंदू हैं ये। इसमें उर्दू में उसने बताया हिंदू का अर्थ है गुलाम, तो क्योंकि ये गुलाम बनाने लगे थे उनका नाम उन्होंने रख दिया था हिंदू है। का हिंदू धर्म है ही नहीं, सनातन धर्म ही है, बाबा ने परफेक्ट नाम दिया है उसको। शिव शंकर का अंतर उसने बहुत सहज अच्छे रूप से बोल दिया, भारत में हर 4 किलोमीटर पर शिवालय हैं कम से कम, कहा उसको किसी को भी शंकरालय नहीं कहते, महेशालय नहीं कहते। बहुत अच्छी अच्छी बात वो सुना रहा था, तो मुझे लगा देखो बाबा ने ये कितना अच्छा इसको पकड़ा है, और ये बाबा का बहुत अच्छा माइक स्पीकर बन सकता है, बहुत अच्छी लैंग्वेज, बोलने में बहुत अच्छी पावर उसके थी। तो उससे पूछा इन्होंने, ये हमारे गंगाधर और ये सब नीचे वाले मीडिया वाले, बाकायदे वीडियोग्राफी की उसने, वीडियोग्राफ वीडियो कैमरे के सामने बैठ के इंटरव्यू दिया 1 घंटा। इन्होंने पूछ लिया कि लोग कह रहे हैं आप शंकराचार्य नहीं है, कह रहे भाई मैं शारदा पीठ का शंकराचार्य हूँ, मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं हूँ, मेरे गुरु ये गद्दी देकर मुझे गए हैं। उसने खुद स्पष्ट किया, आप डिक्लेयर कर सकते हो, मैंने देख लिया है शिव आते हैं, बहुत गदगद, बहुत अच्छा उसने इंटरव्यू दिया है। मैंने तो कहा भाई उससे पूछ लो, चैनल पे जरा प्रसारित कर दो। तो एक अच्छी चीज बाबा ने की है, हम सब फील करें। देखो 2 शंकराचार्य हो गए हमारे, मालूम है आपको, एक उत्तराखंड का जो बनारस में रहता है वो मुरली भी सुनता है, और अब एक ये आ गया, इसने अपनी सारी कहानी सुनाई। कब 80 से शंकराचार्य और मैं, तब मैं छोटा था, 80 में हम सोमनाथ में गए हुए थे, तो आपकी बहन अहमदाबाद से हमारे पास आई थी किसी प्रोग्राम के लिए, गुरु ने आज्ञा दे दी हाँ हम आएंगे। फिर कहा मेरा युवराज है उससे भी जरा बात कर लो, कहा मैंने कहा नारी का और सन्यासियों का कोई नाता नहीं है भाई, मैं तो नहीं आऊंगा। तो कहा भाई मेरा गुरु नर नारी के भेद से परे था और मैं अभी बच्चा था, अब मुझे समझ में आ गया सब। तो 3 बार आ चुका है, बाबा के अच्छे संपर्क में है, अब बाबा से मिलने उसे बुलाया था। मुझे एक संकल्प और मैं आपको कह दूं, आप भी सब करेंगे ये, हम सभी के संकल्पों में बहुत शक्ति है। जिस माता की मैं चर्चा कर रहा था, उसने कहा कि मुझे डर है मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे लड़ेंगे। मैंने कहा जरूर लड़ेंगे। वो देखने लगी मुझे, वो मेरे मुख से सुनना चाहती थी कि मैं कहूँ नहीं लड़ेंगे। क्या तुम लड़ाई का आह्वान कर रही हो ना उनका, तुम क्यों नहीं सोचती मेरे बच्चे बहुत सुखी होंगे, प्यार से रहेंगे। हमारे संकल्प सब कुछ करते हैं। मैं अपनी बात सुना रहा हूँ, मेरी प्राइवेट बात है, कोई गलत न समझना। मैं 5-7 साल से सोचता रहता था सन्यासी बाबा से मिलने आते हैं, काश कोई शंकराचार्य भी आ जाए और देख ले भगवान आता है तो कितना अच्छा हो। आप भी सब ये संकल्प करें। ये धर्म के नेता हैं, सब अब बाबा से शक्ति लेने के लिए आ जाएं, चाहे वो ब्रह्मा कुमार बने न बने। हम जानते हैं ना, हर धर्म का नेता धर्म पिता बाबा से शक्ति लेने आएगा, आएगा ना। हम आह्वान करें आ जाओ। हम क्या सोचते हैं ये हमारे धर्म के नहीं है, ये आएंगे ही नहीं, भगा देते हैं मन से ही उन्हें, आएंगे ही नहीं ये। हम अपने संकल्पों को चेंज करेंगे। तो भगवान हमारी पालना कर रहा है। जरा इस आनंद में आ जाएं सब। मुझे एक बात याद आ गई, देखो टीचर के रूप में पालना, मैं वो बात कर रहा था, कितना सत्य ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। अगर आप 6 दर्शनों का और उपनिषदों का अध्ययन करें तो उनमें आत्मा की बहुत चर्चा है। और आचार्य ऋषि लोग इस फाइनल बात पे पहुंचे ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, कैसी हूं, कहां। कोई कहते यहां, कोई कहते दिल में, कोई कहते सारे शरीर में, कोई कहते है ही नहीं, कोई कहते अलग अलग हैं, कोई कहते एक ही है। और बाबा ने शायद एक ही मिनट में आत्मा का सारा ज्ञान दे दिया। कितनी बड़ी पालना है। सत्य ज्ञान मिलना कोई छोटी प्राप्ति नहीं होती। मुक्ति के बारे में शास्त्रों में हजार चर्चाएं हैं, शास्त्रार्थ होते आए हैं हजारों साल से, बाबा ने सहज कर दिया। अरे वो तो तुम्हारा घर है, तुम वहां थे, फिर चलना है, मैं आ गया हूं तुम्हें लेने। कितनी सरल बात आचार्यों ने, योगियों ने कितनी कठिन बनाई थी। मुक्ति माना, देखो कितनी कठिन थी। पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों ही छोड़ दो, ताकि कर्म का बंधन न हो। पुण्य कर्मों का भी बंधन है, क्योंकि उसका फल मिलेगा। छोड़ सकता है कोई पुण्य कर्म? चलो पाप तो छोड़ दो। सन्यासी के पास कोई आ जाए, प्यास लगी, पानी पिला दो, कहेगा नहीं मैं नहीं पिलाऊंगा, पुण्य हो जाएगा मेरा। कितना कठिन काम हो गया। बाबा ने हंसते हंसते सरल भाषा में प्यार देते देते कितने गुह्य रहस्य खोल डाले। बहुत बड़ी पालना है। बाबा की जो बात मुझे याद आई वो ये है, मुरली है बाबा की, ओम शांति भवन की। बाबा इसी पर मुरली चला रहे थे कि जरा सोचो, भगवान तुम्हारी पालना कर रहा है, तुम परमात्म पालना में पल रहे हो। फिर बाबा ने बोलना शुरू किया, सवेरे बाप आकर तुम्हें उठाता है। उठाता है या नहीं? और जो सोए रहते हैं उनको उठाता तो है, फिर सो जाते हैं। जैसे माँ बच्चे को उठाते फिर सो जाता है ना। फिर कहा पढ़ाने आता है, ब्रह्मा भोजन खिलाता है, रात को सुलाता है, तुम्हारी बातें सुनता है, तुम्हारे दुख के आंसू पोंछता है। फिर बाबा ने कहा अगर दुनिया वाले ये बात सुने तो क्या कहेंगे, भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। और बाबा ने खुद उत्तर दिया, तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। कितने नशे की बात थी, मुझे वो सीन ही याद रहता है। सभी आत्माएं हॉल में बैठी 2000 होंगी, मस्त हो गई। भगवान हमारे लिए खाली बैठा है, सोचो क्या करेंगे। फिर वो सामने बैठ के कहता है, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए हूं और खाली हूं तुम्हारे लिए। फायदा उठाएं हम अपने सद्विवेक का, उपयोग करें कि सुंदर अवसर का कैसे लाभ उठाएंगे। जहां मैं है वहां ये सब चीजें दूर हो जाती है ना। इसलिए बाबा ने समर्पणता की बात की। एक अंग्रेज बहन जो योग में भी यहाँ बैठी थी, अंग्रेज नहीं तमिलनाडु की है पर सिंगापुर में रहती है, मुझे कहा बाबा ने पूछा सभी समर्पित हाथ उठाओ, सबने उठा दिया फटाफट, मैंने नहीं उठाया। भाई मुझे तो बाबा से ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि समर्पणता बड़ी सूक्ष्म चीज है ना सूक्ष्म। जिसकी एक सूक्ष्मता बाबा ने खोली, तन मन धन तेरा, तन तेरा। अगर हम तन समर्पित कर दें बाबा को तो हम क्या बच गए, तो हम सोल कॉन्शियस हो जाएंगे ना, ये देहभान और देहभिमान नष्ट हो जाएगा। ये बाबा पढ़ा रहे थे। तो बड़ी सूक्ष्मता है ना इन सब चीजों में। देखो भगवान हमारी पालना कर रहा है, हम इस पालना का पूरा फायदा उठाएं। और इसका रिटर्न यही है कि जैसा बाबा हमें देखना चाहता है वैसे ही हम हो जाएं। सदगुरु रूप में भी पालना कर रहा है। सभी माताएं, उस माता की जो मैंने कहानी सुनाई, उस पर विचार करना। क्या था इस कहानी में? माँ का अति मोह, और वो मोह उसको कष्ट दे रहा है, और वो भी समझ रही है। मैंने उसको ऐसे ही हंसी में कहा, कल तुम्हारा शरीर छूट जाए तो कहा, मैं मधुबन में थी एक मास पांडव भवन में, तो मैं सोच रही थी मेरा यही शरीर छूट जाए। मैंने कहा कुछ माताएं ये सोचती हैं, हमारा शरीर छूटे तो हम बच्चों के साथ हों, सब साथ जाएंगे ना, आत्मा निकलते याद रहेगी ये मेरे बच्चे। ये मोह आत्माओं को बहुत सता रहा है। मैंने उसको देखा, मैं आपको बता नहीं सकता वो कितनी दुखों में है, दुखों का कोई कारण नहीं। मैंने उसे कहा, बहुत सुखी हो सकते हो, आपके तीनों बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, तीनों को मकान है, तीनों आनंद में हैं, और माँ दुखी है। विचार करेंगे आप इस बात पर, सुख और दुखों का जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है। सभी अच्छी तरह विचार करें। हम मोह में ज्यादा चिंता करते हैं, चिंता की वहां आवश्यकता ही नहीं। उन तीनों के काम बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम हैं। माँ मोह वश दुखी है, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो देखिए, हम सभी इस परमात्म पालना के सुख को जीवन में ले लें। बाबा ने स्वभाव संस्कार बदलने की बात कही, सभी ने सुन ली और सभी ने सोच लिया हमें बदलना है, है? हर व्यक्ति बाबा की बात सुन के अवश्य सोचता है कि मुझे बदलना है, परंतु हमें सोचना ये है, मुझे अपना कौन सा संस्कार बदलना है। दो चार दिन सोचा बदलना है, दो चार दिन में भूल जाएगा सब कुछ, फिर वैसे के वैसे ही होंगे जैसे थे। जब तक हम ये विचार नहीं करेंगे कि मेरा ये संस्कार मेरे लिए और दूसरों के लिए कष्टदायी है, तब तक बदलेंगे नहीं। आपने भी अपनी जीवन की यात्रा में बहुत केस देखे होंगे, हमने भी देखे, हमने यज्ञ में देखे। एक माता हमारे पास रहती थी मधुबन में, अब नहीं है। उसका बोलने का संस्कार, उसको जल्दी गुस्सा आता था, उसकी बहुत ज्यादा इच्छाएं थी, ये खाऊं ये खाऊं ये बनाऊं, दूसरे खा रहे हैं मैं क्यों ना खाऊं। सेवा उसकी कुछ नहीं थी, अपने लिए सारा दिन जाता था उसका, तो भी उसके मुख से क्या निकलता था, सब मुझे बहुत तंग करते हैं। उसे ये बिल्कुल पता नहीं था क्या कि सचमुच तंग वो सबको कर रही थी। मुझे याद है एक दिन वो झगड़ा कर रही, दादी उधर से आ रही थी, दादी ने कहा मैं चलती हूँ उसके पास, दादी को भी हुआ है रोज लड़ती है लोगों से। मैंने दादी को रोका, नहीं आप उसके बाद ना जाओ दादी। दादी नहीं गई, किचन के उस तरफ थी जहाँ डाइनिंग हॉल है छोटे छोटे नीचे ही, क्योंकि उसको बोलने चालने के कुछ वो नहीं थे कि बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, वो कुछ भी बोलेगी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि बदलना उसको चाहिए। उसके मुख पे सदा ही रहता था, सारे यज्ञ वाले मुझे तंग करते हैं। ये स्थिति अगर किसी मनुष्य की है तो क्या वो जीवन में कभी सुखी होगा? हमें ये जानना चाहिए, मुझे अपना ये संस्कार बदलना है। अगर हमें खुशी नहीं रहती तो हम जान लें हमारे विचारों में कहीं कड़वापन है। संस्कार बदलना माना सिंपल चीज, विचार बदलना। विचार हम बदल दें, दूसरे मुझे तंग कर रहे हैं, ये एक विचार है ना, और हम ये विचार कर लें सारा संसार मुझे तंग करे मैं तंग होऊंगा ही नहीं, ये भी एक विचार है ना। हम अपने विचारों को बदलें। माँ अपने बच्चों के मोह में परेशान है, माँ ये भी तो सोच सकती है इन सब का अच्छा भाग्य है, ये सुखी हैं, सुखी रहेंगे, मैं भी सुखी हो जाऊं। हम अपने विचार को, अपने चिंतन को बदलें। हमें याद रखना है संस्कार स्वभाव को बदलने का एक सुंदर तरीका, और वो है अपने देव स्वरूप को याद करना। सवेरे श्याम, सभी जब तक आप यहाँ हैं, सवेरे श्याम अपने देव स्वरूप को अपने सामने ले आओ। मैं ये हूँ, था तो हुई पर अब भी हूँ, ये बिल्कुल विजन क्लियर, मेरा दिव्य स्वरूप ये है। तो जो हमारे विजन में रहता है हम बहुत अच्छी तरह जान ले, माता समझ रहे ना, चित्र, जो चित्र हमारे सामने है उसके वाइब्रेशन हम में प्रवेश करते रहते हैं। ये बहुत अच्छी तरह समझ ले, जो विजन, जो चित्र हमारी आंखों में समाया हुआ है उसके संपूर्ण वाइब्रेशंस हम में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, वो चाहे ब्रह्मा बाबा का विजन सामने ले आए, चाहे अपने संपूर्ण स्वरूप का, चाहे अपने देव स्वरूप का, इससे संस्कार तेजी से बदल जाएंगे। ब्रह्मा बाबा की बात जब चलती है और बाबा कहते हैं फॉलो करो, कॉपी करो, हंसा भी देते हैं, दुनिया में कॉपी करना मना है, यहाँ कॉपी करो, पर फोटो कॉपी तो नहीं हो सकती ना कि कैमरे से निकाल के कॉपी बना दें। बाबा की सच्ची बात तो ये है, बाबा की वास्तविक महानताओं को इस संसार में बहुत कम लोग जान पाए। हम सब जानते हैं किसी विमान आत्मा के साथ यदि 100 लोग रहते हों तो 100 के 100 उसे अलग अलग ढंग से देखेंगे ना। वो एक्चुअली क्या है ये जानने वाले 2-4 ही होंगे। वो मान लो किसी को उठाने के लिए प्यार दे रहा है, किसी को आगे बढ़ाने के लिए, 10 लोग ये सोचेंगे देखा बाबा इसे बहुत प्यार करता है, कैसा है बाबा, पक्षपात है। बहुत कम लोग समझेंगे कि इन्हें बाबा के प्यार की जरूरत है, हमें नहीं है, हम तो बिना उसके भी आगे बढ़ेंगे, पर इस आत्मा को उसके प्यार की जरूरत है। हम भाई बनकर सोचते हैं, वो बाप बनकर सोचता है, ये अंतर है। सब जानते हैं ना भाइयों बहन बहनों का और बाप का क्या अंतर होता है, विचारों में, दृष्टि में, पालना में। तो बाबा वास्तव में यहीं पर राजा थे, सही है भाई, राजा, विचारों की महानता, हृदय की विशालता, छोटी बातों से एकदम दूर, महान तपस्वी, एक्चुअली शंकर महान तपस्वी। उनकी तपस्या का तो लोग कहीं वर्णन ही नहीं करते, बहुत कम आत्माओं ने उनकी तपस्या को पहचाना। बाबा को भविष्य का नशा, अगर हम इससे एक बात की कॉपी कर लें तो हमारे संस्कार बदल जाएं। मैंने सुनाया है यहाँ क्लास में कई बार, जानकी दादी सुनाया करती, सुनाया उन्होंने ग्रुप में, जनरल में नहीं सुनाया, कि वो इस्तियाल के पास से गुजर रही थी तो क्या देखा, बाबा अंदर डांस कर रहा है अकेला। सोचो आप सीन देखो, ब्रह्मा बाबा तब यहाँ होते नहीं थे ना लोग, मुश्किल से 20-25 लोग मधुबन में रहते थे, तो एकांत था फुल, कोई क्लास तो होती नहीं थी, कोई सारा दिन क्लास होंगी, आज का रूप नहीं था यक्का, बिल्कुल सिंपल एक घर, तो बाबा डांस कर रहा है। दादी ने देखा और बाबा ने देख लिया, आ गई अंदर, बाबा डांस कर रहे थे, हाँ बच्ची, बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, मैं क्या बनने वाला हूँ। देखिये बहुत सुंदर रहस्य हो गया, जो चीज प्राप्त होने जा रही है उसका ऐसा आनंद ले रहे थे कि अभी है वो प्राप्त, मरने के बाद प्राप्त होगी नहीं, अभी प्राप्त है। इस रहस्य को भी हम समझ लें, संसार में जीवन में जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी ऐसी विजन हमारे सामने क्लियर हो, उसको इतना एंजॉय करें मानो वो भी है। ये जीवन में हर जगह काम आती है, स्टूडेंट्स को भी काम आएगी, सब माताएं इसका प्रयोग करें। इसलिए भविष्य के बारे में, अपने बारे में, बच्चों के बारे में, काम धंधों के बारे में एक अच्छी विजन रखें, अच्छे विचार रखें, विश्वास कर लें जो हम बार बार सोचेंगे वही होगा। पूरा विश्वास कर लें सभी, इसलिए चिंतित होने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। एक बात और याद दिला दूं बाबा की, क्योंकि वो बाबा तो कहते ही रहते हैं पर उसको करने वाले बहुत कम आत्माएं हैं। साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में बदलो दृढ़ता। बातों का काम है आना और हमारा काम है विजयी बनना। साधारण पुरुषार्थ को तीव्र में बदलने के लिए मैं दो मिनट में आपके सामने ये कहूंगा। साधारण पुरुषार्थ सब जानते हैं, एक है चार्ट लिखना। हम सब जानते हैं चार्ट लिखने में कितने ब्राह्मण सफल हैं, 1% भी नहीं होंगे ना। तो जो चीज सफलतापूर्वक नहीं की जा रही, जो चीज फेल हो गई है, उसके पीछा छोड़कर हम एक दूसरा मार्ग अपनाएं, वो है पुरुषार्थ की प्लानिंग करना। अपने अपने पुरुषार्थ की सभी प्लानिंग करें। मैं माताओं को कहूं, आपको सब्जी काटनी है, संकल्प लिखो अपने पास, मुझे सब्जी काटते ये अभ्यास करना है, खुद लिखेंगे। आपको रोटी बेलनी है, मुझे रोटी बनाते हुए ये अभ्यास करना है। आपको भोजन खाना है, मुझे खाते हुए ये अभ्यास करना है। आपको पैदल चलना है, ये अभ्यास, पैदल चलना है ना यहाँ कितनी बार, यहाँ से वहां, वहां से वहां, ये अभ्यास करना है। मुझे स्नान करते ये अभ्यास करना है। सवेरे का समय इसी अभ्यास में बिताएंगे। एक प्लानिंग के बिना अच्छा पुरुषार्थ नहीं हो सकता। और इसमें भी जो और अच्छा करना चाहते हैं वो उस प्लानिंग को रोज लिखें, चाहे वही हो डेली वाली, उसे आप रोज लिखें, तो वो नई दृढ़ता जीवन में देगी। ऐसा साधारण पुरुषार्थ को सभी तीव्र पुरुषार्थ में बदलेंगे। बदलेंगे देखो बाबा बहुत खुश होगा, करना तो हमें है, और जो करेंगे वो चमकेंगे। जो करेंगे केवल उच्च पद पाएंगे ये नहीं, अब समय आ रहा है चमकने का, अब समय आ रहा है विश्व की स्टेज पर आने का। मेरे को तो एक फीलिंग ऐसी जबरदस्त हो रही है जो मेरे मुख पर आ ही जाती है। मुझे ऐसा लगता है अगले 5 साल में 15 तक, आप सोचेंगे 2012 में विनाश हो जाएगा 15 आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 15 तक इस संसार की ये स्थिति हो जाएगी, पॉपुलेशन के आधे लोग रात को सो नहीं पाएंगे। ये होगी मनुष्यों के पाप कर्मों की सजा। पाप बहुत बढ़ रहा है ना, लोग आजकल पैसे के लिए पाप कर रहे हैं। कभी काम वासना का प्रकोप संसार में था हमारे देखते देखते, कभी क्रोध का, और अब चल रहा है लोभ का, और फाइनल में चलेगा मोह का। अहंकार तो साथ साथ चला। लोभ पाप करा रहा है ना, और पाप के फल से कोई बचेगा नहीं। मैं देखता हूं मेरे पास बहुत केस आने लगे हैं, मन की स्पीड फास्ट हो गई है, क्या करें। इतना सोच रहे हैं कि ये नहीं पता क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, रोकने की बात तो दूर। तो हम सभी सावधान हो स्वमान के अभ्यास से, परमात्म पालना से, ज्ञान की पालना से, अपने चित्त को शांत रखना लक्ष्य बना लें। बहुत कुछ होता रहेगा, वो सब कुछ होगा जिसकी जिसके हमने स्वप्न भी नहीं देखे। हमें चित्त को शांत करना है। लंबे समय का अभ्यास फाइनल में भी हमें साक्षी बनाएगा। ओम शांति।